بسم الله الرحمن الرحيم جی
میں ضروری جو دہی صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا تھا وہ بتایا تھا کہ بیسکلی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دیر از ون تھنگ کالڈ ڈسکرمنیشن اینڈ ون از ڈیفرینشیشن. تو کہیں خدا کے نزدیک میں ڈیفرینشیشن ہے جس کو ہم ڈسکرمنیشن سمجھتے ہیں, اور وہ ڈیفرینشیشن جو ہے وہ کیا چیز, وہ بتا رہے تھے کہ وی ول سی لیٹر آن دیٹ دی ڈیفرینشیشن آف ایگزسٹینس is due to their varying potential and abilities in receiving grace and emanation from the source and origin of being. To ye vary karti hai basically aapke potential and abilities. To jo uska aakhir mein final assembly di hai na wo ye hai ki God's justice lies in not withholding his grace from his creation that has any capacity whatsoever for receiving it. Ye bahut important hai ki agar aapke andar capacity thi receiving karne ki to God ki جو مینیفیسٹیشن آپ کے اوپر آ رہی ہے, جو سے گریس آ رہا ہے, وہ وتھ ہولڈ نہیں کر رہا. یہ آپ کی اپنی جو ہے نا کمی ہے, یا آپ نے اپنے نفس کو اس حالت میں نہیں پہنچایا ایون کہ آپ مرنے کے بعد بھی, کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو پاسبل نہیں تھی وہ ہو جائے. تو اسی لیے جو سورہ مدثر کی آیت تھی جو آپ نے پہلے بہت پہلے مطلب یہ نہیں کہ گاڈ انٹرسیشن نہیں کرنے دے گا, پرابلم یہ ہے کہ انٹرسیشن کا فائدہ نہیں ہوگا کرے گا رن ٹائم کے اوپر, کہ تم بتاؤ یہ صحیح ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے الاؤنس دیتا ہوں تمہیں, ایسا نہیں ہو رہا
جی. یہ اسی کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک مثال بھی دی تھی نا, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا امتحان ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کی جگہ امتحان میں بیٹھ جائے, یہ نہیں ہے. بلکہ آخرت کا مطلب یہ جو بھی حساب ہے انسانی زندگی کا, وہ سیلف ڈیولپمنٹ کا حساب ہے, یعنی دوسرے آپ کو ڈیولپ ہونے میں مدد دے سکتے ہیں, آپ کے حصے کا کام نہیں کر سکتا کوئی بھی. یہ بات ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی آئمہ طاہرین علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں, یعنی میں اس کی مثال بھی میں نے بلکہ پچھلی دفعہ وہاں بھی دی تھی, کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اولاد معذور ہو جائے, مفلوج ہو جائے, اپاہج ہو جائے, پیرنٹس اس کی کیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, پھینک تو نہیں دیتے نا اس کو اٹھا کے. السلام علیکم, آئیے علیہ السلام. یعنی ہم دنیاوی مثالوں سے یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اولاد معذور ہے, اپاہج ہے, اس کے پاس وہ خود سے اپنی صلاحیت نہیں رکھتی اپنے کام کو کرنے کی, پیرنٹ تو اس کو نہیں کہتے گھر سے نکلو جاؤ. پیرنٹ جس کو نہیں کیئر کر سکتے وہ ہے جو پیرنٹ کو پیرنٹ ماننے سے انکار کر دے, جو ان کے سامنے خود سری کرے, یہ کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے, میں آپ سے زیادہ عقل مند ہوں, اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز خدا بھی ہم کو سمجھا رہا ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں کے لیے پرابلمز ہیں وہ کون ہیں, کفار, عنید, معتد, مریب, ان صفات کی پوری لسٹ بنائیے کہ جن کو خدا نے بدبخت قرار دیا ہے آخرت کے حوالے سے, اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے, حدوں سے گزرنے والے, حد سے زیادہ شک. اور سب سے بڑی ان کی کوالٹی کیا ہے اس قسم کے لوگوں کی, سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صرف خود نہیں روکتے, دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے رستے پہ آنے سے. جو سب سے بڑی مصیبت انسان, یعنی یہ دو باتیں نا, کہ انسان اپنے لیے سب سے بڑی اچھائی کیا کریٹ کر سکتا ہے, کہ لوگوں کو سبیل الہی کی طرف دعوت دے, اس کے لیے محرک بنے. اس سے بڑی نیکی کوئی انسان اپنے حق میں نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی برائی انسان اپنے لیے کیا کر سکتا ہے, کہ لوگوں کو خدا کے رستے پہ چلنے سے روک دے, اس قسم کی بات کرے, اس قسم کے نظریات سامنے رکھیں کہ لوگ اللہ کے رستے پہ آتے ہوئے رک جائیں. یعنی کہ جن کی اولین صدر اسلام میں مثال ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان, یہ سب اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. कि जिनका काम क्या था, यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फहम इतना मजबूत नहीं है, उनकी अकल इतनी मजबूत नहीं है कि वो खुद से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से परख सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत अहम बातें हैं कि भाई आपके उसके ऊपर ही मैंने कहा था कि एक सवाल कि अदल और फजल की जो बात हो रही थी कि खुदा का मामला बंदों के साथ अदल पर है या फजल पर है या किस पर है। और आखिर मैंने एक चीज़ ये भी लिखी थी कि जहन्नम को हम कैसे डिफाइन करेंगे बजाते खुद, कि जहन्नम भी कंपैशन यानी खुदा के फजल और उसकी मोहब्बत का मजहर है या क्या है।
आपने हेल्पलेसनेस लिखी थी, मुझे बता सकते पहले कि जो जो आपने किया है वो आप देख रहे।
हाँ वो तो है, लेकिन खुदा के लिए ये नहीं हम कह सकते कि कभी भी खुदा का निज़ाम मजबूर हो जाता है, बल्कि बेसिकली उसके अंदर चीज़ यही है कि निज़ाम खुदा, इस पर हम बात कर चुके हैं कि निज़ाम खुदा इवन काफिर और मुशरिक और बदतरीन अफराद को भी रिकवर करने की कोशिश करता है। यानी आग की सबसे अहम क्वालिटी क्या है, आपने कभी गौर किया है इस पर? प्योरीफायर। आग की जो सबसे अहम क्वालिटी है वो पाक करना है एक चीज को। ठीक है, तो आग अगर आखिरत में भी, सलाम अलैकुम, जहन्नम को, आइए इधर आना, जहन्नम को आग से ताबीर दी जा रही है तो उसमें एक इशारा ये भी है कि यानी जहन्नम में भेजने का मकसद पाक करना है जो पाक हो सकता है। और अभी मैं जैसे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहि की एक हदीस भी पढ़ रहा था आपसे मरवी एक रिवायत है कि जिसमें आपने फरमाया कि हमारे शिया जो हैं उनमें से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, यानी हम तक कैसे पहुंचेंगे हमारे शिया। कुछ वो लोग हैं कि जो दुनिया की बला और परेशानियों से गुजर के पहुँच जाएंगे, कुछ वो हैं जो कब्र की तकलीफ उठा के पहुँचेंगे, कुछ वो हैं जो जहन्नम के पहले तबके में एक अरसा गुजार के पहुँचेंगे। शियों की बात हो रही है कि डिपेंडिंग ऑन, और उसमें ही आपने जो बात कही है कि बेसिकली जो हमारे शिया हैं वो कौन हैं कि जिससे जिस चीज़ का हमने हुक्म दिया है उस पर अमल करते हैं न के मानते हैं। तो ये जिस चीज़ जो हमारा अमर है उस पर अमल करते हैं, और जिस चीज़ को हमने अरबी में लफ्ज़ के झिड़क दिया है, जजरा का लफ्ज़ है झिड़की का, उससे अपने को दूर रखते हैं, उससे इज्तनाब करते हैं। ये शियों की तारीफ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई है। दो एक किताब है सहीफतुल ज़हरा जिसमें आपके बहुत सारे वाक़ियात और दुआएँ और वह सब मैं वो पढ़ रहा था तो उसमें कई चीज़ें सामने आई। तो ये आपने फरमाया कि लेकिन जो हमारे शिया हैं उनमें से हर एक एक दर्जे का नहीं है, कोई दुनिया के मसाइब और मुश्किल से गुजर के इतने इस जगह पे आ जाते हैं कि हमारे साथ मिल जाएं, कुछ कब्र की तकलीफें उठा के, कुछ जहन्नम के तबके अव्वल में एक अरसा गुजार के। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली जब भी हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो समझने की बात है ना, वो समझने की बात यही है जो मारिफत हमको हासिल हो रही है कुरान और अहले बैत से कि ज़िंदगी इस तरीके का इम्तिहान नहीं है ज़िंदगी का कि आप गए और आपसे क्वेश्चन पूछे गए और जनाब सही जवाब दे दो और गलत जवाब दे दो और ये कर ली, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। यानी कि क्या होता है कि हम अगर मिसाल के तौर पर ख़ुद अपने आप को भी देख लें कि अगर हमारे अंदर ख़ुद एक मजबूती नहीं है तो इम्तिहानी कमरे की दहशत ही भुला देती है सब कुछ। ये सब चीज़ें हैं जो रिवायतों में मौजूद हैं आखिरत के हवाले से, कब्र के हवाले से, और ये तमाम मसाइल यानी कि ये हम हैं कि जिसमें से जवाब निकल रहा होगा या जवाब सामने आ रहा होगा। तो बेहतर यही है, यानी कि जो मेरे जहन में बात आती है कि ज़िंदगी गुजारने की प्रॉपर अप्रोच यही है कि आप इस बात का तसव्वुर करके अपनी ज़िंदगी गुजारें कि मुझे खुदा ने जो निज़ाम कायम किया है उसको 100% फॉलो करना है, ओबे करना है, यानी अदल पे रहना है, अदालत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करें और फिर फजल खुदा के उम्मीदवार हों। यानी मुझे जितना समझ में आता है कि लाइफ को स्पेंड करने की बेस्ट अप्रोच है ये कि हम पहले ही अपनी तमाम जिम्मेदारियों को फोरगो कर दें जो खुदा ने हमसे एक्सपेक्ट किया है एक मुसलमान एक मोमिन की हैसियत से, उन चीज़ों को साइड में कर दें और फिर फजल खुदा की उम्मीद लेके बैठे रहें। मुझे ये अप्रोच बहुत डेंजरस लगती है कि ये काम यहाँ से ये ख़राब होने वाला काम है। इस पर तो हम पूरे के पूरे जितनी हम एफर्ट कर सकते हैं अदालत पे कायम रहने की, मेरिट पे आगे बढ़ने की, वो हम करें और फिर उसके बाद खुदा की रहमत और मग़फ़रत और फजल की उम्मीद रखें। अच्छा, पिछली दफ़ा जो हमारी बात हो रही थी उसमें जो जहाँ पे हम रुके थे सूरतुल आराफ 50 पे, और उसमें ख़ास तौर से बात क्या थी कि जो आग वाले लोग होंगे अस्हाब नार जिनका मुकद्दर आग है यौम आखिरत, वो जन्नत वाले लोगों से कहेंगे अन अफीज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अफीज़ु यानी कुछ हम पर मेहरबानी करो, फैज़ पहुँचाओ हमें हमारे ऊपर, किस में से, पानी में से, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह या उसमें से कि जो अल्लाह ने तुमको रिज़्क़ अता किया है। कि ये जुमले ऐसे हैं कि जैसे कोई मजबूर किसी के सामने भीख मांगने के लिए खैरात के लिए हाथ फैला दे। देखिए ये बाकायदा गुफ्तगुशनीद है या आपस में बातचीत है, यानी क्योंकि मैदान महशर में सब साथ होंगे और रफ्ता 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 करके अलग होते चले जाएंगे। जो तस्वीर कुरान करीम पेश कर रहा है मैदान महशर की वो ये कि मैदान महशर यानी जमा होने की जगह पर सब साथ होंगे, एक जगह पर होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और फिर उनके दरमियान दीवारें हाइल होती चली जाएंगी या दराजात का फ़र्क होता चला जाएगा बेस्ड ऑन देयर ओन लेवल्स, बेस्ड ऑन देयर ओन कंडीशंस। तो उनको जवाब क्या मिलेगा, कालू वो कहेंगे इन्नल्लाहा हर्रमहुमा अलल काफिरीन, यहीं पर हमारी बात ख़त्म हुई थी कि अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों को यानी पानी और रिज्क अपने रिज्क को काफिरीन पर हराम करार दे दिया है। यानी हराम करार देना, एक बात जहन में रखिएगा कि आखिरत का हराम और हलाल दुनिया के हराम और हलाल की तरह नहीं है। और इसको समझाने के लिए इस्तलाहन एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तकवीन व तशरीक, यानी इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में हराम और हलाल एक बनाए हुए कानून की शक्ल में, एक मेड लॉ की शक्ल में, और उसके मुकाबले में इंसान को इख्तियार भी दिया गया है, तो इंसान उस हराम और हलाल को ब्रेक कर सकता है इस दुनिया के अंदर, कानून तशरीई को शरीयत को ब्रेक कर सकता है। आखिरत का हराम और हलाल ये नहीं है, आखिरत का हराम और हलाल है लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि इंसान से पूछेंगे क्या इंसान ये काम कर सकता है कि एक घंटे तक सांस ना ले, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये वो कानून नहीं है जो शरीयत के तरीके से बनाया गया है जिसको तोड़ दे कोई अपने अख्तियार से। यानी इस जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कानून शरीयत हैं कि जिनको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लॉज ऑफ नेचर है उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो आखिरत का हराम और हलाल लॉ ऑफ नेचर के इक्वलेंट है, न कि कानून शरीयत जो दुनिया में बनाया जाता है कि जिसको कहे कि इंसान अरबों खरबों अरबों इंसान जो हैं वो हराम को अंजाम दे रहे हैं, बज़ाहिर कोई नहीं पकड़ रहा उनको, लेकिन आखिरत में हराम मीन्स कैनॉट बी डन, हराम मीन्स नॉट एलिजिबल नॉट अलाउबल विद इन द फ्रेमवर्क। तो जब खुदा कह रहा है कि हर्रमा हुमा, इन दोनों चीज़ों को काफिरीन पर खुदा ने हराम करार दी है, इसका मतलब है कि काफिर के नफ्स के लिए ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हैं आखिरत में, ठीक है। और ये वो बात है जिससे हमें खौफजदा रहना चाहिए, ये बात है ना। यानी कि मैं इस चीज़ को बार बार पॉइंट आउट कराता जा रहा हूँ, और यही वजह भी बनी थी इन आयतों के बयान करने की और आखिरत के हवाले से मुतवज्जह कराने की, कि क्योंकि परवरदिगार आलमीन ने जब अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है तो एक अजीब जुमला है, इन्ना अखलफनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रद्दार, बेशक हमने इनको खालिस कर लिया है, इन्हें बिल्कुल प्योरीफाई कर लिया है, किस चीज़ के लिए, ज़िक्रद्दार, घर की याद के लिए। यानी जो भी अकलमंद इंसान है, जो भी समझदार इंसान है, उसे पता है कि घर कहाँ है, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझता है कि घर कहाँ है। तो अंबिया के बारे में खुदा फरमा रहा है अखलफनाहुम बिखालिसतिन, यानी हमने बिल्कुल अटमोस्ट वे में प्योरीफाई कर लिया इनको, किस चीज़ के लिए, ज़िक्रद्दार, यानी ये इस जगह की याद में एक लम्हे के लिए भी मशगूल नहीं होते हैं जो फ़ानी है, जो खुदा के मुंतखब बंदे हैं, जो खुदा के मुस्तफ़ा और मुजतबा बंदे हैं, वो खालिस हैं लिज़िक्रद्दार, घर की याद के लिए। और घर क्या है, इन्नद्दारल आखिरता लहियल हयवान लव कानू यालमून, के बेशक आखिरत का घर है लहियल हयवान, हयवान का मतलब क्या है, जो जिंदा है, न कि वहां जिंदगी पाई जाती है, दैट इज अलाइव। तो उसके मुकाबले में जो दुनिया है ये क्या है, ये मुर्दा है, फानी है। तो ये एक बहुत अहम बात है, और इसमें जो हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी जो मैं अपने लिए फील कर रहा हूँ, वो ये कि हम अगर अपने नेचुरल, यानी अपने इनसाइड और रियल सेल्फ को देखें, तो वहाँ हमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। हम अपने तौर से खुश हैं कि जी हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, मुख्तलिफ गुनागुन किस्म के काम अंजाम दे रहे हैं मज़हब के नाम पर, दीन के नाम पर, लेकिन जब हम तन्हाई में जाते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपने अंदर कोई रोशनी और नूरानियत नहीं पा रहे होते कि मोमिन हकीकतन कौन है। मोमिन वो है कि जो तन्हाई में ज़्यादा सुकून महसूस करता है बनिस्बत लोगों के दरमियान होने के, क्योंकि तन्हाई में वो अपने नफ्स में मौजूद जन्नत के साथ होता है। और जब किसी महफिल में बैठा होता है तो लोगों के नफूस का दबाव उसको तकलीफ दे रहा होता है, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं है। तो ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि आखिरत के अंदर जो चीज खुल के सामने आएगी, जो चीज वाजे होगी, जो हमारी होगी, वो है कि जो मेरा रियल सेल्फ बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन लोग हैं, अब इनकी तारीफ भी कुरान ने बयान की कि काफिर कौन है। यानी ये वो मकाम है जो हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, कि कुरान की डेफिनेशंस हमारी डेफिनेशन से डिफर करती हैं। यानी हम किसे काफिर कहते हैं, कुरान किसको काफिर कह रहा है, क्योंकि काफिरीन के पर आयत रुक नहीं रही है, उनकी तारीफ भी बयान हो रही है। अल्लज़ीना, वो लोग, इत्तखज़ू दीनहुम लहवं व लअबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। काफिर कौन है, वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने दीन को, अपने दीन को पकड़ लिया है लहवन व लअबन। इसकी तारीफ आप दोनों लफ्जों की आपके जहन में होगी, लहव क्या चीज़ है, यानी वो चीज़ जो आपको खुदा के रास्ते से खींच ले अपनी तरफ। लाइब क्या चीज़ है, जिसके लिए कोई प्रॉपर दलील, बुरहान, इरफान, किसी किस्म की कोई बेस नहीं है, एक फैब्रिकेटेड बात है, खाली ख्याली और तसव्वुराती बातें, एतबारी बातें। और उसकी मिसाल मैं बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, कभी रुक के सोचा करें कि उसकी कोई हकीकत भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये उनका दीन क्या है? लहवन व लाइबन, इन्हें मासियतों की तरफ खिंच खिंच के चले जाना और ख्याली और तसव्वुराती बातों पर। दीनहुम, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, दीनहुम, उन्होंने अपने दीन को लहव व लाइब बना लिया है। दीन को, ये मुसलमानों पर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहां पर जिन काफिरीन की बात हो रही है, वो हकीकतन काफिरीन है या उस सेंस में काफिरीन है कि जो हम कहते हैं? यानी आखिरत में जो काफिर है वो कौन है? वो नहीं है कि जो दुनिया के लिहाज से या दुनिया में कि हाँ ये इनकार, नहीं, खुदा कुछ और तारीफ बयान कर रहा है। जिन्होंने इत्तेखाज किया, इत्तेखाज का मतलब है पकड़ना, एक्सट्रैक्ट करना, ग्रैब करना अपने दीन को, लहवन व लाइबन व गुर्रतहुमुल हयातुद्दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में रखा कि वो अब इन्हें इस पर जो हैं बहुत मिसालें दी जा सकती हैं, कुरान से भी, कुरान के बाहर से भी। मैं सूरह फतह से आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जब सुलह हुदैबिया भी थी और उस वक्त रसूल खुदा जब बाहर आए थे मदीने से और ये सब चीज़ें थीं, तो बहुत सारे लोग रह गए थे पीछे। और उसके बाद वो रसूल खुदा के पास आए ये उज़र लेकर कि हमें हमारे अमवाल ने, हमें हमारे अहल ने, हमें हमारे घर वालों ने रोक लिया। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर कि हम बाहर चले जाते तो हमारे बिजनेसेस ख़राब हो जाते और हमारे घर वालों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती और ये सब चीज़ें हो जाती, तो आप हमारे लिए इस्तग़फ़ार करें। खुदा ने इसका जवाब ये दिया है कि ये जो मुंह से बोल रहे हैं ये इनके दिलों में नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो हर जगह ऐसे ही बिहेव करते हैं। 6 हिजरी की हुदैबिया भी है, उसके बाद 7 हिजरी में खैबर भी है। ये खैबर में 7 नहीं थे मैदान जंग में, लेकिन जब खैबर में बेतहाशा माल गनीमत आए तो सब लेने पहुंच गए। उस वक्त उनको नहीं याद आ रहा था ये सब बातें। ठीक है, ये गुर्रतहुमुल हयातुद्दुनिया है कि जिस तरीके से सूरह मुनाफिकून में भी है कि ठीक है, मुनाफिकीन क्या कह रहे हैं कि जब हम मदीने वापस जाएंगे, लयुखरजनल अअज़ मिनहल अज़ल, क्योंकि वो एक बहस हो रही थी मोमिनीन और मुनाफिकीन में, तो उन्होंने कहा मदीने ठीक है पलट के जाते हैं, जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल बार करेगा। ये खुद सूरह मुनाफिकून के जुमले। तो खुदा क्या कह रहे हैं कि वलिल्लाहिल इज्जत जमीअ वलिर रसूल वलिल मोमिनीन, कि इज्जत कुल की कुल खुदा के लिए और इज्जत खुदा के साए में इज्जत रसूल और मोमिनीन के लिए, लेकिन मुनाफिकीन को ना इस बात का इल्म है ना समझ है। ठीक है, ये दुनिया की जिंदगी इस तरीके से धोखा देती है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास ग्रुप है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इन लोगों की क्या हैसियत है जो हमारे मुकाबले में आने को कुरान करीम ने थ्रू आउट अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों के अंदर इस एटीट्यूड को बयान किया। तो गुर्रत हुमुल हयातुद्दुनिया, और हयात दुनिया के धोखे में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? माल और औलाद, कि जो इंसान को हक देखने से और हक पर अमल करने से रोक देती है, डाइवर्ट कर देती है जो चीज़ें। इसके बाद का जो टुकड़ा है वो और खतरनाक है। फलयौमा ननसाहुम कमा नसू लिकाअ यौमिहिम हाजा। फलयौमा, पस उस दिन, ननसाहुम, हमने उनको भुला दिया। अगर आप इसकी गहराई में जा सकते हैं ना, तो अगर इस जुमले की गहराई में जा सकते हैं कि खुदा का भुलाना यानी क्या मतलब। आज मैं और आप क्यों जिंदा हैं? इसलिए कि खुदा ने हमें याद रखा हुआ है। ठीक है, अगर एक लम्हे के लिए भी खुदा हमें भुला दे तो मेरा वजूद आदम में चला जाएगा। और इसी चीज़ को जितने भी बुजुर्गान हैं वो यही इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि आलम खिलकत हर लहजा हर लम्हा फैज़ इलाही का मोहताज है। यानी ज़िंदगी यूं नहीं है कि बन गई और एक खुदकार निज़ाम के तहत चल रही है, बल्कि ये ज़िंदगी हर लहजा और हर लम्हा अपने खालिक की नज़र करम की मोहताज है। यानी खुदा ने याद रखा हुआ है हमको, हुवल हय्युल क़य्यूम। आखिरत में अगर खुदा किसी को भुला दे तो क्या मतलब है इसका? यानी इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा खतरनाक बात किसी के लिए हो नहीं सकती है। कि अगर आप दुआए कुमैल के भी जुमलों पर गौर करें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम बार बार इसी चीज को पेश कर रहे हैं कि ये बात भी मेरे लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि मैं जहन्नम में चला जाऊं। किसके मुकाबले में? कि तेरी नजर एक इनायत मुझसे अपना मुंह मोड़ ले। दुआए कुमैल में इस कस्म के जुमले हैं ना, आइन नजर इला करामतिक, तेरी नजर करामत ने। ये सबसे खतरनाक बात है कि अगर किसी इंसान की या किसी वजूद मौजूद की हकीकत उसको कहे कि मैं तुमको भुला रहा हूं, उसके लिए क्या होप है, क्या उम्मीद है उसके लिए? मतलब एक ठीक है कि वो हमसे नाराज है, सजा देगा, सरजनिश करेगा, उसके बाद कुछ हो जाएगा, वो फिर भी एक बात है। भुला देना मीन खत्म, फिर क्या है उसके लिए उम्मीद? और ये भुलाना किस वजह से है? कमा नसू लिका यौमहिम हाजा, कि जिस तरीके से तुमने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था, यानी तुमने इस बात को फरामोश कर दिया था कि एक दिन आना है कि जब तुम्हें हमारे पास आना है, हमारी बारगाह में हाजिर होना है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी? या लहब में गुजारी, या लहब में गुजारी, या दुनिया के गुरूर में गुजारी। गुरूर यानी धोखा, गुरूर का मतलब वो अकड़ नहीं है, गुरूर यानी धोखा। तो गुरूर यानी जो इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है वो धोखे में मुबतला है, यानी मगरूर है। गुरूर गर्रत को मुल हयात दुनिया, हयात दुनिया की, दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखा दे दिया और तुम भूले रहे सब कुछ। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि उस दिन हम तुमको भुला देंगे। अब इसी से मिलती जुलती आयतें हैं जो इसी से बिल्कुल कनेक्ट होती हैं, वो थोड़ी आपको सुना दें। सूरह हदीद, वो भी यही आखिरत का ही मंजर है, मैदान महशर को ही डिफाइन किया जा रहा है। आयत नंबर 12 एंड ऑनवर्ड्स कि यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनाती, उस दिन तुम देखोगे किनको? मुमिनीन को और मुमिनात को, यानी मुमिन मर्दों को, मुमिन औरतों को। किस हालत में? यसअ नूरुहुम बैन अईदीहिम व बि अईमानिहिम। यसअ के सई करता होगा, दौड़ता होगा, नूरुहुम उनका नूर, बैन अईदीहिम उनके सामने, व बि अईमानिहिम और उनके दाहिने तरफ। इसमें खास बात क्या है जो बहुत तवज्जो तलब है? नूर ओ हुम, इससे आप समझिए कि जो असल प्रॉब्लम क्या है। उनका नूर यानी हर मोमिन आखिरत में अपने नूर के साथ आएगा। ये नूर क्या है? ये नूर वो है जो उसके ईमान और अमल साले से बनाए। ठीक है, अगरचे कि अल्लाह अपने बारे में कहता है कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, लेकिन आखिरत में मोमिन को जब खुदा रेफर कर रहा है तो खुदा ये नहीं कह रहा है कि मैंने इनको ये नूर दिया है, नूर हम। इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि हम सबको अपना नूर बनाना है। वो नूर कहाँ है, मतलब कुछ तो हमें पता चले ना उस नूर के बारे में, कि हम जो अपने लिए जो नूर बना रहे हैं, कि जो मैदान महशर में हमारे आगे और दाहिने तरफ किधर है वो नूर, अभी तक उसकी खबर हमें क्यों नहीं है, उस नूर के बारे में कुछ पता हमें क्यों नहीं चल रहा। ये बहुत ज़्यादा लम्हे फिक्री है हमारी ज़िंदगी में, जिस पर हमें गौर करना है। क्योंकि खुदा ये नहीं कह रहा कि आखिरत में मोमिनीन इस तरीके से उठेंगे कि हम उनको नूर दे देंगे। नूर हम, उस दिन तुम देखोगे मोमिनीन और मोमिनात को के दौड़ता होगा उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं तरफ। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है नूर हम वाली बात। बुशरा कुमुल यौम, बशारत है तुम्हारे लिए आज के दिन। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा, जन्नात हैं यानी मोमिन को खुदा एक बाग नहीं देगा, जन्नात प्लूरल है, बहुत सारे बागात, बहुत सारे गार्डन्स। और इसमें जो बात की जाती है यानी कि खुदा जब आखिरत में हिसाब करेगा तो यानी अमल के लिहाज से एक बाग, ईमान के लिहाज से एक बाग, और मुख्तलिफ जितनी भी जिहात में इंसान ने नेकियां की हैं, हर नेकी की जहत एक अलग बाग जनरेट करेगी मोमिन के लिए। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी हैं जिसके नीचे से नहरें। अब ये तहतिहा का लफ्ज़ किस बात को सिग्निफाई कर रहा है, कि नीचे का मतलब ये होता है कि इट इज़ ऑल अंडर योर कंट्रोल, आप इससे बालातर हैं, जन्नत की नेमतें आपके अंडर में हैं, यानी ये आपकी बनाई हुई हैं, आपकी वजह से हैं ये सब कुछ, ठीक है। यानी इसमें एक इशारा ये भी है कि मोमिन अपनी जन्नत से अफजल है, और जन्नत में जितनी नेमतें उसको हासिल होंगी वो सब की सब उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। तहतेहा, उसके नीचे से नहरें जारी होंगी। खालिदीन फीहा, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, हमने पिछली सूरतुल आराफ में पढ़ा था कि ये मोमिन से मुलाकात होगी कुछ और लोगों से, और उसमें अगर आपको याद हो तो पहले वो आयतें भी थीं कि उनसे असहाब आराफ कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में तुम दुनिया में कहते थे कि इन तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुँचेगी, इन पर खुदा नज़र रहमत नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि मोमिन से कौन मुखातिब होगा, मुनाफिकून वल मुनाफिकात, कि कहते होंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, लिल्लज़ीना आमनु, उन लोगों से के जो ईमान लाए, उन दुरूना, हमारी तरफ नज़र करो। अभी जो जुमला मैंने पढ़ा क्या था, अन अफीज़ु अलैना मिन अल्मा, हमें कुछ फैज़ पहुंचा दो जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है। ये मुनाफिक मर्द और औरतें मोमिनीन को मुखातिब करके क्या कहेंगे, उन दुरूना, इन्हें बराए मेहरबानी हमारी तरफ भी देख लो। नक्तबिस मिन नूरकुम, कि हम तुम्हारे नूर में से कोई रोशन चिंगारी ले लें, कोई अंगारा ले लें। मतलब अब ये बाकायदा कुरान करीम ने ये मैदान महशर के मनाजिर खींचे हैं कि काफिरीन का ये हाल होगा ही नहीं, सब के सब लोग के जो दुनिया में मोमिनीन को लान तान करते थे, उनको बदबख्त करार देते थे, उनको मखलूकात में पस्त करार देते थे उनकी ज़ाहरी मजबूरी और कमज़ोरी की वजह से, आखिरत में भीख मांग रहे होंगे उनसे, उनके सामने कि हम पर फैज़ कर दो, हम पर नज़र इनायत कर दो, हमारी तरफ देख लो खुदा के वास्ते। नक्तबिस, قبصہ کہتے ہیں انگارے کو، ٹھیک ہے، نقتبس کہ ہم بھی کچھ تمہارے نور میں سے کوئی انگارہ لے لیں، کچھ روشنی ہمیں بھی مل جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو کہاں پا رہے ہیں؟ تاریکی میں پا رہے ہیں. اب یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ ایک ہی جگہ پر ایک گروہ ہے کہ جو نورانی ہے، اسی جگہ پر دوسرا گروہ تاریک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلیئر میننگ ہے، یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ کوئی بیرونی روشنی نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے کہ سورج کی روشنی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ کون مومن ہے کافر ہے، سب روشنی میں کھڑے ہیں. آخرت کا نور نفس کا نور ہے. اسی لیے خدا نے پہلے کہا کہ مومنین کے لیے نور و ہم، اور یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ اب اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ نورانی ہے، ہم تاریک ہیں ہمارے پاس، تو کہہ رہے ہیں نقتبس من نورکم. اور یہ کس مینٹیلٹی کی طرف اشارہ ہے؟ اب مجھے بتائیں کس مینٹیلٹی کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ الاعراف میں بیان ہوئی اور سورہ حدید میں دوبارہ آئی منافقون کے حوالے سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں کبھی اپنی تربیت اور اپنی نورانیت پر انہوں نے کوئی محنت نہیں کی. یعنی دنیا میں بھی ان کا یہی کام تھا کہ اگر کبھی کوئی ضرورت پڑی تم دے دو. اور آخرت، کیونکہ آخرت کیا ہے؟ آخرت جو کچھ بھی کوالٹیز ہیں ان کے باہر آنے کی جگہ ہے. تو جو منافقین، یعنی جو حقیقتاً منافق ہے، وہ دنیا میں بھی یہی کر رہا ہے کہ اس کے لیے خدا نے نورانی ہونے کے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان سے استفادہ نہیں کر رہا، اور اگر کبھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتا ہے تم دے دو. یعنی مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں خود نورانی ہوں، ادھر ادھر سے چلو دنیا میں تو مانگ تانگ کے کام چلا لیں گے، آپ آخرت میں کیا کریں گے؟ کہ جو عالم ظہور حقیقت ہے، جہاں سوائے حقیقت اور سچ کی کوئی دوسری چیز ظاہر نہیں ہوتی. نقتبس من نورکم، اب ان کو بھی کیا جواب دیا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا ارجعوا، رجعت یعنی پلٹنا، وراءکم جو تمہارے پیچھے، واٹ از بیہائنڈ یو، وہاں لوٹو. فلتمسوا نورا، وہاں جا کے نور تلاش کرو. اب اس سے زیادہ، اب ہم کچھ بھی سوچتے رہے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، لیکن اس سے زیادہ کلیئر میسج دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس حماقت میں نہیں رہنا کہ وہاں جا کے کچھ مل جائے گا. قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا ارجعوا، لوٹو، واپس جاؤ، رجعت یعنی پلٹنا جہاں سے آئے تھے. وراءکم، وراء کہتے ہیں پشت سر، جو پیٹ پیچھے ہو، کہ تم اپنے پیٹ کے پیچھے جو چھوڑ کے آ گئے، یعنی عالم دنیا، عالم عمل وہ تھا، نورانیت حاصل کرنے کی جگہ وہ تھی. فلتمسوا نورا، وہاں جا کے التماس نور کرو، یہاں نہیں ملنے والا ہے کچھ بھی. پھر کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور له باب، اب جیسے ہی ہر ایک کو اپنا اپنا نام عمل مل گیا، سیگریگیشن شروع ہو گئی. فضرب بینہم، ڈال دی جائے گی ان کے درمیان بسور، ایک دیوار. یعنی اس کا مطلب ہے پہلے آمنے سامنے دیکھ کے بات کر رہے تھے، کیونکہ دنیا میں منافق اور مومن ساتھ ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایسے دنیا میں مومنین اور منافقین باہم ہمراہ زندگی گزار رہے ہیں. آخرت میں بھی جب ہوگا تو ابتدا یہیں سے ہوگی، لیکن مومن اپنے ساتھ نور کو دیکھ رہا ہوگا، اپنے نور کو اپنے سامنے دوڑتے ہوئے، منافق اپنے کو تاریک دیکھ رہا ہوگا. ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے کہ اپنے نور میں سے کوئی چنگاری ہے، کوئی انگارہ ہم کو دے دو. ان کو کہا جائے گا کہ یہ سب چیزیں تو تم پیچھے چھوڑا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ कि आखिरत की नूरानियत ट्रांसफरेबल नहीं है। जिस तरीके से खुदा ने इन्हें सूरतुल आराफ की आयत में बयान किया कि खुदा ने पानी और रिस्क को हराम करार दे दिया है काफिरीन पर, जो मैंने कहा कि ये नेचुरल है, ये इट कैन नॉट बी वायोलेटेड, ये कोई अहकाम शरीयत नहीं है कि जिसको जो दिल चाहे कर दे। इसी तरीके से आखिरत में नूर ट्रांसफरेबल नहीं है, बाप बेटे को नहीं दे सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। यानी हर शख्स अपनी नूरानियत और तारीकी के साथ वहां पे मौजूद है, और अगर शफाअत है तो वो भी उस बुनियाद पर है कि जो हम दुनिया में करके आए। यानी वहां पर अगर किसी को शफाअत मिलेगी या जिंदगी बेहतर होगी या रफ्ता रफ्ता इम्प्रूव होगी, तो वो भी उस बुनियाद पर कि वो वाली कैफियत ना हो कि अल्लाह को भुला दिया था, आखिरत को भुला दिया था, गुनाहगार थे, मजबूर थे, यानी किसी वजह से खराबी थी, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रैक पे थे, कबूल कर रहे थे, ईमान रखते थे, उन लोगों के लिए कि रफ्ता 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 वो रिकवर हो जाएंगे, तो उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी, लहू बाब उन, कि उस दीवार के लिए एक दर होगा, दरवाज़ा होगा, बातिनुहू फीहि रहमतो, उसके बातिन में रहमत है, वज़ाहिरुहू मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके ज़ाहिर में, उसके मुकाबले में, उसके सामने अज़ाब है। यानी कि एक दीवार जिसके अंदर जन्नत है, बाहर दोज़ख है, तो मोमिनीन उसके बतन में और बातिन में होंगे, और मुनाफिकीन उसके ज़ाहिर में होंगे। अभी भी मुनाफिकीन गए नहीं। युनादूनहुम, पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था ना, निदा, निदा यानि जब फासला होता है तो पुकारना, निदा, युनादूनहुम, फासला हो गया, पहले यकूल था, कौल था, आमने सामने बात हो रही थी, अब फासला हो गया, युनादूनहुम, वो पुकार के कहेंगे, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। कितने खतरनाक अल्फाज हैं, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारते थे। इसका मतलब है साथ जिंदगी गुजारने से कुछ नहीं होता अगर इंसान अपने अंदर नूरानियत पैदा ना करे। अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारी मईयत में नहीं थे। कालू बला, जवाब देंगे हाँ बिल्कुल थे, हमने तुमने साथ जिंदगी गुजारी दुनिया में। वलाकिन्नकुम फतन्तुम अन्फुसकुम, लेकिन तुमने अपने नफूस को फितने में डाल दिया, फितनों में फंसा दिया। फितना क्या है, कुरान ने बताया ना फितना क्या है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, तुमने अपने नफूस को फितनों में डाल दिया। व तरबस्तुम वर्तब तुम, तरबस या तरबसू का मतलब ये होता है कि आप बैठें और इंतज़ार करें, तुमने इकदाम नहीं किया ज़िंदगी में, कोई अमल नहीं किया, तुम बैठे रहे बस, यू जस्ट वेटेड फॉर नथिंग, सोचते ही रहे कि करेंगे कुछ, कोई इकदाम नहीं किया। वर्तब तुम, ज़िंदगी में इल्म और यकीन की तरफ नहीं बढ़े, शक डाउट को एंटरटेन करते रहे। कितनी चीज़ें हैं जो हम में मौजूद हैं, सब कि हम कोलू के बैल की तरीके से घूम रहे होते हैं जिंदगी के एक बड़े हिस्से में, कि एक इल्म यकीन की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते कि हक क्या है बातिल क्या है, हक को समझने के बाद उस पर अमल नहीं कर पाते। ये सारे के सारे काम तुम करते रहे, तुमने अपने नफूस को फितनों में डाला, तुम बैठे रहे जिंदगी में, अमल नहीं किया तुमने, और तुमने अपने आप को शक में मुब्तला रखा। वगरत को मुल अमानियो, और तुम्हारी उम्मीदों ने तुमको धोखा दे दिया, जैसे पीछे था गरत को मुल हयात दुनिया, तुम्हारी उम्मीदों ने, उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में रखा। इन्हें अमानी क्या है, अभी मुझे घर बनाना है, इसलिए मैं दीन पे अमल नहीं कर सकता। अभी मुझे जॉब तलाश करना ही नहीं, हम सब हैं, हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब ऐसे ही हैं। अभी मुझे जॉब तलाश करना है इसलिए मैं दीन पे अमल नहीं कर सकता। अभी मुझे बच्चे पालना है इसलिए मैं कुरान में गौर फिक्र नहीं कर सकता। गुर्रतकुमुल अमानी, ये जो उम्मीदें और उम्मीदियतें तुम्हारी ज़िंदगी में थीं इसने तुमको धोखे में रखा। किस चीज़ से धोखे में रखा है कि तुम खुदा के रास्ते पर चलो। हत्ता जा अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि अम्र इलाही आन पहुँचा। और वह अम्र इलाही क्या है? इंतकाल है, अजल है, मौत है। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और धोखे ने तुमको धोखे में रखा अल्लाह के बारे में। यानी ये जिंदगी ये पूरी तुम्हारे लिए धोखा बनती रही। फल यौमा ला युखज़ु मिनकुम फिदयतुन, तो आज के दिन कोई बदला नहीं है जो तुमसे लिया जा सके। यू कैन नॉट पे फॉर दिस। वला मिन अल्लज़ीना कफरू, और ना उन लोगों से के जो काफिर हो गए। यानी ना कुफार और मुनाफिकीन आज कुछ पे करके बच नहीं सकते। और फिर इसका अगला जुमला जो है ना बहुत खतरनाक है। मावाकुमुन्नार, मावाकुमुन्नार यानी तकरीबन इससे मिलता जुलता मतलब यह है कि तुम्हारी माँ आग है, तुम्हारी पनागाह, तुम्हें आगोश में लेने वाली, तुम्हें अपनी पनाह में सुलाने वाली क्या चीज है? आग है। हिया मौलाकुम, यही तुम्हारी मौला है। यानी आग का मतलब क्या हुआ कि तुमने दुनिया में जिसको, जो बात मैं पिछली दफा भी आपसे कह रहा था कि मुहिम तरीन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड इज विलायत एंड इमामत। क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी विलायत और इमामत के हवाले से धोखे में गुजार रहे होते हैं, और हम इस बात को स्क्रूटिनाइज ही नहीं कर पाते कि हम हकीकतन किसकी विलायत में जिंदा हैं, किसकी इमामत में हरकत कर रहे हैं। कुछ लोग, यानी अगर इन आयतों से मैं एक्सट्रैक्ट करूं मीनिंग, कुछ लोग विलायत नूर में जिंदा हैं, कुछ लोग विलायत नार में जिंदा हैं। जो हक और हकीकत और सदाकत और सच्चाई की राह पर चल रहे हैं वो विलायत नूर में जिंदा हैं, और वो उस नूर को मैदान महशर में अपने सामने पाएंगे। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको खुदा आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये धोखा फरेब। यानी कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जी मैं 5 साल से सोच रहा हूँ, अभी तक समझ में नहीं आया कि सही बात क्या है। मुसीबत है ये कि अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि किस तरफ चलूं। अभी मैं सोच ही रहा हूं कि हाँ मुझे कुरान में गौर फिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए कि नहीं। सुनता तो बहुत हूं कि कुरान में है कि अफला ताकिलून और अफला या तदब्बरून, लेकिन बस अभी तक मौका नहीं मिल पाया। क्या यही मुसीबत है ये जो सब आयतों में बयान हो रही है? तरबस्तुम वर्तबतुम, बैठे हुए इंतज़ार में। किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हैं? इसी चीज़ के इंतज़ार में कि हत्ता जा अम्रुल्लाह, कि अम्र इलाही आ जाए, फैसले की घड़ी आ जाए, जिसके बाद अमल मुमकिन नहीं है, वो वक्त आ जाए। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला है कि जिस नेकी में तुम उजलत नहीं करते, उजलत समझते हैं जल्दी फौरन, उसको अपनी नेकी में शुमार मत करो। यानी तुम्हारे, मिसाल के तौर पर हमें ख्याल आया कि मैं किसी के लिए सदका दूं, अब टल रहा है टल रहा है, आप फरमाते हैं उसको अपनी नेकी में नहीं शुमार करो। नेकी हकीकतन वो है कि जिसमें तुम उजलत करो, जल्दी करो कि ये मोहलत ना निकल जाए। मुझे क्या पता कि मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं। अगर मुझे किसी बरादर मोमिन की खिदमत करना है, किसी को पैसे देने हैं या किसी की इमदाद करनी है, डू इट क्विक। इस उम्मीद पे नहीं बैठे रहो कि कल कर दूंगा या एक घंटे बाद कर दूंगा। तो हत्ता जा अमरुल्लाह, यानी कि जो लोग ये काम नहीं कर रहे वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा, बल्कि ये उलमा ने भी बयान किया है, हमारे यहाँ खुतबा और ज़ाकिरीन ने भी बयान किया है बहुत अच्छा, बल्कि मैंने रशीद तरावी साहब की एक मजलिस में सुना था कि उन्होंने ये बात कही थी कि इंसान खुदा से मांगने में और तलब में उस वक्त देर करे जब उसे इस बात का यकीन हो कि एक सांस के जाने के बाद अगली सांस आएगी। और अगर तुम्हें इस बात का इल्म है और मारिफत है कि तुम हर हर लम्हे फैज़ इलाही के मुहताज हो, तो तुम उसके सामने दस्त सवाल फैलाने में देर किस बात की करते हो? खुदा से तलब हिदायत क्यों नहीं करते? खुदा की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते क्यों नहीं हो? वेटिंग फॉर वॉट? कि वो वक्त आ जाए कि जब बदबख्तों के तरीके से दुनिया से निकल जाना पड़े। और हमेशा, और ये आयतें मैंने आपके सामने इसीलिए सिर्फ आयतें पढ़ी हैं, आप इसका जाके तर्जुमा देखें, इसकी तफसीर देखें, ये सब आयतें, ये कलाम इलाही, ये पैगाम वही हमें किस तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि जो लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं वो मुनाफिक हैं। यानी कि इन आयतों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुनाफिक और काफिर वो लेबलिंग नहीं है जो मैं और आप करते हैं, बल्कि जो ये जिंदगी गुजारते हैं जिसको बयान किया गया सूरह हदीद की आयत 14 में, ये मुनाफिकीन है। जिनको बयान किया गया सूरह आराफ की आयत 51 में, वो काफिरीन है। टैग कुछ भी लगावाओ, से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? क्योंकि आखिरत में हकीकत जांची जाती है, न कि दावा, न कि क्लेम, न कि बातें। तो ये यानी कि बेसिकली मेरा जो इन तमाम बातों को करने का जो बुनियादी मकसद था वो ये कि हम इस बारे में बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हो जाएं तो बेहतर है। और जो नूरानियत इंसान के अंदर होती है वो पता चलती है, जाहिर होती है, क्योंकि खुदा आखिरत में मोमिन के लिए नूर की बात कर रहा है। ये नूर कहाँ से बन रहा है? ये नूर दुनिया से बन रहा है। तो मोमिन को अपने अंदर वो नूरानियत नज़र आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए, जैसे कि हम बुज़ुर्ग उलमा के अंदर। और आखिरी आयत के जो हमें झंझोड़ देने वाली है ये इन्हीं बयानात के बाद सूरह हदीद 16, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या नहीं आ गया वक्त लिल्लज़ीना आमनू उन लोगों के लिए जो ईमान लाए? क्योंकि खाली इस बात को कह देना कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं काफ़ी नहीं होता, तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना ये चीज़ काफ़ी नहीं है। लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के लिए क्या वो वक्त नहीं आ गया? अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके कुलूब अल्लाह की याद के लिए खाशे हो जाएं। खुशू का मतलब क्या है? झुक जाना, सरेंडर, सबमिशन। किस चीज़ के लिए? इबादत के लिए नहीं, लिज़िक्रिल्लाह, यानी उनके दिल झुक जाएं याद खुदा के लिए, कि मोमिनीन के कुलूब वो ना हो कि उसमें कभी शैतान टाइम गुजारता है कभी खुदा टाइम गुजारता है। मोमिनीन के कुलूब ऐसे ना हो, बल्कि मोमिनीन के कुलूब ऐसे हों कि जो झुक कर जिक्र इलाही का इस्तकबाल करें और उसे अपने अंदर जगा दें। अलम यान लिल्लज़ीना, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया? इन्हें वही बात, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो जब तुम तक रोशन निशानियां पहुंच चुकी हैं, जब हमने तुम्हारे सामने से हर शक शुबे को हटा दिया है, क्लियर कर दी है सारी बातें, अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक, अल्लाह का जिक्र और जो अल्लाह ने हक में से नाजिल किया यानी कुरान। और अगर आप इससे आगे बढ़ें तो अहले बैत अलैहिस्सलाम, अल्लाह की याद के लिए, और जो अल्लाह ने हक में से नाजिल किया उसके सामने इन मोमिनीन के दिल नहीं झुक रहे, ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या उनके लिए वक्त नहीं है? इसका मतलब है कि हर ईमान का दावा करने वाला ऐसा नहीं है। हर ईमान का दावा करने वाला शख्स, उसका कल्ब खुदा की बारगाह में खाशे नहीं है या खुदा के पैगाम के आगे झुका हुआ नहीं है। और फिर उसके बाद वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, और ये उनकी मानिंद ना हो जाएं कि जिनको किताब दी गई पहले वालों में से। उन्होंने क्या काम किया? फ़ताला अलैहिमुल अमद, वो इसी तरीके से वक्त बर्बाद करते रहे। फ़ताला तूल खींच गई, प्रोलोंग हो गई, अलैहिम उन पर अमद मुद्दत, यानी कि वो खाली दावा ईमान से ही खुश होके बैठे रहे, खुशू कल्बी पर मेहनत नहीं की। इस हालत में एक मुद्दत गुजर गई तो नतीजा क्या हुआ? फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल पत्थर हो गए। बात वाज़ेह हो रही है? अगर दावा ईमानी के बाद इंसान इस बात पर मेहनत ना करे कि जिक्र खुदा से और पैगाम वही से दिल नरम हो जाए, और इस हालत में एक मुद्दत गुजर जाए, तो ये दिल पत्थर की मानिंद हो जाएंगे, किसी चीज का असर नहीं होगा इस पर, कुछ कबूल नहीं करेंगे। वकसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से अक्सरियत कौन है? फासिकून। फासिकून का मतलब यह है कि जो खुदा के बनाए हुए दायरे में नहीं जिंदगी गुजारते, उससे बाहर चले जाते हैं। इन्हें अरबी में फसका कहते हैं कि जैसे आप खजूर को पकड़ के दबाएं तो उसकी गुठली उसके गिलाफ को, खाल को फाड़ के बाहर निकल आती है, इसको कहते हैं फसका। इन्हें फासिक वो होता है कि जो खुदा की मुकर्रर की हुई हद को तोड़ के बाहर निकल जाए। तो क्योंकि इनमें से अक्सरियत खुदा की मुकर्रर करदा हदूद की पाबंदी नहीं करते, उसका लिहाज नहीं रखते, उसकी खातिर और रियायत नहीं करते, इस वजह से उनके दिल खुदा की बारगाह में झुकते नहीं हैं, खुशू नहीं पाते, पत्थर हो गए। तो ये अब आखिरी सवाल जो है वो यही है कि ये दिलों का पत्थर होना आखिरत में, दुनिया में, ये कब की बात हो रही है? दुनिया की बात हो रही है ना। यानी जिसका कल्ब खुदा की बारगाह में खाशे हैं वो भी दुनिया में, और अहले किताब और मोमिनीन का जिक्र है यहां पे। यानी खुदा मोमिनीन को खबरदार कर रहा है इस बात से कि तुम सिर्फ दावा ईमानी करके नहीं बैठ जाओ, इससे नहीं तुम्हारा काम बनने वाला है, बल्कि तुम्हें जिस चीज पर मेहनत करना है वो खशियत कल्ब है, ले जिक्र अल्लाह, और वमा नज़ला मिनल हक, के जो खुदा ने हक में से नाजिल किया, जिस पर हमारा ईमान है कि जो खुदा ने नाजिल किया वो कुरान और अहले बैत दोनों हैं, यानी वो नूर हकीकतन नूर वाहिद है जो अलग अलग सूरतों में नाजिल हुआ है, लेकिन जो खुदा ने नाजिल किया और जो याद है खुदा है, उसके लिए अगर दिलों में खशियत नहीं पैदा हो रही है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसी दुनिया की जिंदगी में एक वक्त वो आएगा कि जब दिल पत्थर की मानिंद हो जाएंगे। इन्हें मुझे नहीं पता कि हम इस बात को किस जगह पर लें कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मतलब इस कदर अजियतनाक मसाइब सुनते हैं और उसके दो मिनट बाद हंस रहे होते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपकी समझ ही में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये किस किस्म का बिहेवियर है। मतलब इस शख्स पर जो ये रो रहा था या ये झूठ था या ये जो हंस रहा है ये झूठ है, मतलब ये कैसे इतना टर्न अराउंड हो जाता है इंसान में? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मसाइब और उसकी रियलिटी वो उस जगह पर नहीं असर कर रहे हैं कल्ब। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में मौत हो और मेरे सामने कोई मजाहिया जुमला कहे, बहुत मुश्किल है कि हंसी आए, ठीक है, तो हमें इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना है। ये खशियत कल्बी है, इंसान के दिल का झुकना, उसका नर्म होना, और नर्म होने वाले दिल की निशानी क्या है, उसकी अलामत क्या है, गिरिया खुदा के ज़िक्र से। कुरान, यानी कुरान की आय, कुरान में ख़ुद मौजूद है सूरह मरियम में, कि जो अल्लाह के मखसूस बंदे हैं यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम, जब उन पर रहमान की आयतों की तिलावत की जाती है तो क्या होते हैं, खर्रू सुज्जदम व बुकिया, वो गिर पड़ते हैं सजदे में बुका की हालत में, गिरियाउजारी की हालत में। तो बहरहाल ये वो एक चीज़ थी कि जो मुझे बहुत ज़्यादा पिंच भी कर रही थी कि इस हवाले से मैं मुतवज्जे कराने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारे साथ जो बहुत बड़ा एक डायलेमा इस लाइफ में हो गया है वो यही हो गया है कि हमारी मादी आसूदगी हमें इस धोखे में मुब्तला रखती है कि हमारी आखिरत भी सही चल रही है, और हम उस जगह पर कि जहाँ पर आखिरत बनती है उस जगह पर देखने और तवज्जो करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में ही अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को लेकर चल रहा होता है। और ये खुद यानी कि जो हमारे उरफा हैं उन्होंने इस किस्म की तमाम बातें बहुत क्लियरली की हैं, जैसे आयतुल्लाह हसन दादा अमली ने एक हदीस बयान की है पैगंबर अकरम की, एक सहाबी थे कैस बिन आसिम, उसमें रसूल खुदा फरमाते हैं इन्ना मअद दुनिया अल आखिरा, आखिरत और दुनिया एक दूसरे की मईयत में है, इन पैरेलल है, ना कि सीरीज में। इन्ना मअद दुनिया अल आखिरा, आखिरत और दुनिया यानी कि दुनिया के बाद आखिरत आती है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ ज्यादातर लोग दुनिया के बाद अपनी आखिरत देखेंगे, जो यहाँ मुतवज्जे नहीं है वो वहाँ जाके अपनी आखिरत देखेंगे, वरना इंसान यहाँ पर जिस तरीके से अपनी दुनिया देखता है वैसे ही आखिरत भी देख सकता है। वो आखिरत कहाँ पे पाई जाती है, वो मेरे नफ्स में मौजूद है, वो मेरी ज़ात में, मेरे वजूद में, लेकिन मैं इस काबिल ही नहीं हुआ कि अपने आप को देख सकूँ। मैं अपने जिस्म को देख सकता हूँ, मैं अपने जिस्म के बाहर चीज़ों को देख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक इस काबिल नहीं हुआ कि अपनी ज़ात को देख सकूं। और जिस दिन अपनी ज़ात को देखने के काबिल हो जाऊंगा मुझे अपनी आखिरत क्लियरली नज़र आएगी कि मेरी हकीकत क्या है, नऊज़ु बिल्लाह नार है या खुदा के फजल व करम से नूर है, मोहब्बत है, नफ़रत है, अदावत है, सब मेरे अंदर मौजूद है। जी इंडिकेशन क्या होगी जब आपको पता चलेगा कि आप अंदर देखने लगे हैं, आप कुछ इंडिकेशन यही होती है कि जैसे नूर की बात करें, फील होना, वो तो तीन चीजें जो मैंने बताई थी कि वो तो है ही है, वो तो तीन पैरामीटर्स ही हैं। यानी सबसे पहली चीज जो होती है ना वो इंसान के अंदर सुकून और आसूदगी का एहसास होता है, और ये वाली हालत होती है कि फिर दुनिया आपको तंग करना छोड़ देती है। यानी जैसे हमारे सामने जो उलमा हैं, खुद इमाम खुमैनी की मिसाल मैं कई दफ़ा आप लोगों को सुना भी चुका हूँ कि जब उनके बेटे का इंतकाल हुआ मुस्तफ़ा का, तो सारे लोग बहुत परेशान थे कि किस तरीके से ये खबर सुनाई जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा ही उनका बहुत मतलब अजीज़ भी थे, बहुत उम्मीदों का मरकज़ भी थे, बहुत करीब भी थे। तो मतलब उन्होंने ही कहा है कि ये इस ज़िंदगी का हिस्सा है, जब ये खबर उन्होंने खुद ही भांप लिया कि कुछ हुआ है, और कहा कि क्या मुस्तफ़ा को कुछ हो गया है, तो उनके साथ जो लोग थे वो रोने लगे, तो उन्होंने कहा ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और बल्कि जो जुमला बहुत अजीब था कि इन यके अज़ल्ताफ़ खफ़ी इलाही अस्त, कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बहुत सारे ऐसे लुत्फ़ व करम रखे हैं जो मख़फ़ी हैं, यानी नहीं नज़र आते, छुपे में, ये उनमें से एक लुत्फ है। तो ये वो इंसान है कि जो वाकयन अपनी आखिरत के साथ जिंदा है, जिसके अंदर नूर है। हम लोग यहां पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना, ये नहीं कि अगर खुदा ने हमें किसी ऐसे इम्तिहान में डाल दिया तो हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा, जबकि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये सब महज इम्तिहान है, क्योंकि इस दुनिया में किसी के आगे या पीछे चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको ही जाना है, ठीक है ना। ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप पहले चले जाएँ या मैं पहले चला जाऊँ। जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना कि किसी जाने वाले को वो रोए जिसे खुद ना जाना हो, इस बात पर रो के अच्छे तरीके से जाऊं, इस बात पर रोने का क्या फायदा है कि वो चला गया, तुम भी वहीं जा रहे हो, उसी रास्ते पे चल रहे हो, तुम कौन सा उस रास्ते से अलग हो। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है वो सुकून है, और उसकी भी दलील मैं आपको दे देता हूँ, खुद कुरानी आयतों से ही दे देता हूँ ये दलील। अगर आप सूरह फतह पढ़ें, सूरह फतह नंबर 48 है, उसमें इब्तिदा होती है कि खुदा ने पैगंबर अकरम के हवाले से कुछ नेमतों का जिक्र किया। आयत नंबर 4, हुवल्लज़ी अनज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, यानी जो अल्लाह वो है कि जो नाजिल करता है सकीना को, कहाँ नाजिल करता है, फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, मुमिनीन के क़ुलूब में। फी का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को किसी ज़र्फ़ में डाल लें, बर्तन में डाल लें, तो यानी मोमिनीन के कुलूब ज़र्फ़ हैं, उसमें अल्लाह क्या डाल देता है, नाजिल करता है। नाजिल का मतलब बुलंदी से एक चीज़ नीचे आए, खुदा की तरफ से बुलंदी से क्या चीज़ नीचे आती है, सकीना, सुकून, ठीक है। कहाँ आती है, फ़ी कुलूबिल मोमिनीन। अब दुनिया कुछ भी कर ले, मोमिन का कल्ब मुजतरब नहीं होता, जो हकीकी मोमिन, यानी जिस कल्ब में खुदा ने सकीना को डाल दिया है, दुनिया की कोई चीज उसको मुजतरब और परेशान नहीं कर सकती। तो अगर ये चीज पैदा हो रही है और उसके बाद दूसरा लियज़दादू ईमानम मा ईमानहिम, ताकि ज्यादती करे, बढ़ा दे ईमान को, मा ईमानहिम उनके ईमान के साथ, यानी उन्होंने तो अपने तरफ से जो ईमान हासिल किया वो तो है ही है, जिसकी बुनियाद पर सकीना नाजिल हो रही है, लेकिन खुदा उस ईमान में एडिशन करता चला जाएगा अपनी तरफ से, यानी फिर जो मोमिन के ईमान में ज्यादती और तरक्की होगी वो तोहफे खुदाबंदी है। हाँ, इन्हें हमें एफर्ट वही करनी पड़ेगी कि जो पैगाम है वही है उसके मुताबिक। और इसमें जो सबसे अहम वर्ड ऑफ कॉशन है कि डू नॉट ट्राई टू इन्वेंट द पैसेज योरसेल्फ, अपने आप को इस बात पर मामूर करो कि खुदा ने क्या चाहा है, न कि अपनी मर्जी से रास्ता बना के बैठे हैं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो उस पर चलेंगे इंशाल्लाह, ये चीज़ आएगी, क्योंकि खुदा कह रहा है कि ये काम हम करेंगे, कि जब सकीना है, वक़ार है, ये सब तहाइफ मोमिन को खुदा की तरफ से नसीब होते हैं, तो वो एक मोहकम और एक मजबूत पुरअज़म शख्सियत का मालिक होता है। फिर जिन्हें हमें खुद अपने अंदर ये महसूस होगा कि अब दुनिया मुझ पर असरअंदाज होने के हवाले से कमज़ोर पड़ रही है, इसकी ग्रिप कमज़ोर पड़ रही है, यानी पहले जो चीज़ें मुझे हिला मारती थी कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी एक वाकया हुआ तो अब पूरे दिन की नमाजें गईं, होता है कि नहीं, यानी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई ज़िंदगी में कि कहीं कोर्ट जाना है खुदा ना खास्ता, या कोई एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का या कुछ हो गया, अब आप पढ़ लीजिए नमाज, हर वक्त वही चीज़ घूम रही है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सुकून और इत्मीनान की हालत होगी खुदा के हवाले से, आखिरत के हवाले से।
नहीं,
इसमें ये बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम अगर अभी एक चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह कोई हमारी नालायकी है, यानी कोई ऐसा काम है कि जो खुदा को पसंद नहीं आ रहा है, उसकी वजह आपकी कमज़ोरी नहीं है। ठीक है, जो बात मैं समझाना चाह रहा था कि खुदा को बंदे के ईमान का ज़ोफ नहीं रोकता है, ईमान की कजी और खराबी रोकती है फजल खुदा को पहुंचने से। यानी एक कजी हमने पैदा कर दी है, जैसे मैंने आपको एक इशारा दिया ना कि हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम दीन को खुद ईजाद करें। यानी फॉर एग्जांपल हमने ये सोच लिया है कि मैं फलां 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 काम करूंगा खुदा मुझसे खुश हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास उसके पीछे पूरा वो है, मतलब दलील और सबूत मौजूद है कि हम लोग इन्हें मिसाल के तौर पर कि जिस तरीके से कहीं भी आते हैं जाते हैं ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं, इन्हें एक बहुत बड़ी मिसाल ले लेंगे, हम लोग जैसे महाफिल और मजालिस के इनेकाद कर रहे होते हैं और हमें बचपन से इस बात को समझाया जा रहा होता है कि बस ये तो भाई जन्नत का नुस्खा, चाहे कुछ भी बोला जा रहा हूँ यहाँ पर, और कोई भी बात, चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को तबाह बर्बाद किया जा रहा हो उस जगह पर, लेकिन बस आप सफ़े अज़ा पे बैठ गए, सो कॉल्ड सफ़े अज़ा पे, और बस जन्नत का नुस्खा है। क्या ये बात सही है? और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, या ये कि ऐसी जो मैंने पिछली दफ़ा भी पॉइंट आउट कराया था कि हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी गलती हमारे अंदर मौजूद है, नादानिस्तगी में बरादर मोमिन की तौहीन और उसके कल्ब को उसके दिल को दुखाना मजाक के नाम पर, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से कि मेरे जुमले को से उसके दिल को कुछ नहीं हुआ। यानी ये इस किस्म की चीज़ें, ये नालायकी की वजह से रास्ता रुकता है, कमज़ोरी की वजह से नहीं रुकता, क्योंकि ये तो खुदा कह ही चुका है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, वो तो खुदा को पहले ही पता है कि तुम सब के सब फकीर हो खुदा के सामने। तो खुदा हमसे कोई स्ट्रेंथ थोड़ी मांग रहा है, खुदा हमसे सिंसियरिटी और ऑनेस्टी मांग रहा है, वो हम नहीं दे पाते, काम वहां पे खराब हो जाता है। यानी हम अपने तई एक बात समझ रहे होते हैं कि गलत है, फिर भी वही करते हैं, हम अपने अंदर से जान रहे होते हैं कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, फिर भी चलते हैं, इससे गड़बड़ होती है। वरना निज़ाम है खुदा, आपके सामने मिसालें नहीं है किस किस तरीके से खुदा ने मिसाल के तौर पर जॉन और वहाब कलबी और जुहैर कैन और इस किस्म के अफराद, क्या चांस था इनका ज़ाहरी ज़िंदगी में इस मकाम तक पहुंचने का जहां पर वो पहुंच गया। तो फजल खुदा रद्द नहीं करता है बंदे को। जी और कोई बात?
जो है ना भाई, एक जहन में सवाल आ रहा है कि कुछ जो खुदा की सिफात है वो इस दुनिया में है, वो आखिरत में काम नहीं करेंगी वो सिफात?
मसलन
मसलन सत्तारुल अयूब,
सत्तारुल अयूब जो है, यानी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हैं कि एक मुअय्यना मुद्दत के लिए, एक मसलहत के लिए,
दुनिया के लिए हो गई
एक मुअय्यना मुद्दत और मसलहत के, यानी आखिरत में उसकी एक हकीकत है लेकिन इस तरीके से नहीं है।
कैसे?
यानी इस तरीके, देखें कोई भी मखलूक है वो मखलूक होना बजात खुद ऐब है, क्योंकि मखलूक होने का मतलब है मोहताजी, मखलूक होने का मतलब है फकीरी। तो खुदा अगर किसी भी मखलूक को ज़िंदगी देता है, चाहे दुनिया में या आखिरत में, ये उसके ऐब मोहताजी को छुपा रहा है अल्लाह। लेकिन इस दुनिया में ये सत्तारुल अयूब एक और रंग में सामने आ जाता है, वो ये है कि वो गुनाह जो मेरे नफ्स को तबाह कर रहे हैं उन पर भी खुदा पर्दे डाल देता है एक मुद्दत के लिए, यहाँ भी फॉरएवर नहीं है। इन्हें आपने वो बहुत मशहूर वाकया सुना होगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक आया था चोर, और उसने जिन्हें उसके हाथ काटने का आपने हुक्म दिया तो वो रोने चिल्लाने लगा कि मैं तो पहली दफ़ा किया है, माफ़ कर दें, और वो कर दें, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली दफ़ा पे खुदा सज़ा देता ही नहीं है, पहली दफ़ा पे खुदा सज़ा देता ही नहीं है। तो उसके बाद उसने कबूला कि मेरी 100 या 100 से भी ज़्यादा मरतबा चोरी है जिसके बाद मैं पकड़ा गया हूँ, सज़ा मिली। तो इस दुनिया में सत्तारुल अयूब, यानी सत्तारुल अयूब जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं वो इस सेंस में है कि तुम्हें एक मोहलत दी जा रही है टू इम्प्रूव, टू करेक्ट योरसेल्फ, टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आलम 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 हकीकत है। आलम हकीकत में जो कुछ है यौम तुबलस सराइर, जो कुछ अंदर छुपा हुआ है राज की तरह से सब बाहर आएगा, ठीक है। और यानी वो चीज में भी पॉसिबल हो उन लोगों के लिए कि जो दुनिया से ईमान लेके जा रहे हैं, उनके लिए मगफरत है, रहमत है और वो सब चीजें। लेकिन जो कुरानी आयतें बता रही हैं कि जिस दुनिया से तुमने ना नूर लिया, शक धोखे फरेब में पड़े रहे, तो वही चीज सामने आएगी फिर वहां भी।
शफात वाले भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि जो दुनिया से थोड़ा सा ईमान लेके जा रहे हैं।
शफात का मतलब यही है कि यानी खुदा ने हमारे शाफियीन जो है ना उनको आप ये समझिए कि खुदा ने इंसानों के लिए मददगार करार दिए। निज़ाम शफात को आप यूं देखिए, यानी निज़ाम शफात खुदा से हट के नहीं है कि हम ये समझते हैं ना कि खुदा तो सजा देना चाह रहा है और शाफियीन बचा रहे हैं, यूं नहीं है निज़ाम। यानी इसकी मिसाल अगर दुनियावी तौर पर समझना चाहें तो इसकी मिसाल ये होती है कि जैसे बाप अगर बेटे को कभी डांटने या सजा देने के लिए उसको सख्त अल्फाज करता है और साथ में दूसरे बड़े बेटे को, बड़े भाई को इशारा कर देता है इसको मेरे सामने से ले जाओ, तो जो भाई एक्ट कर रहा है वो ऑन हिज ओन नहीं कर रहा, वो भी बाप के हुक्म पे कर रहा है। तो शफाअत का मतलब, शफाअत खुदा की रहमत का दरवाजा है सिंपली, के क्योंकि अल्लाह ताला ने इस जिंदगी में शैतान को पीछे लगाया इंसान के, ये पीछे जैसे मैंने पीछे लगाया का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि उरफा कहते हैं कि ये कुत्ता है, कुत्ते की मानिंद है शैतान की, कि जो पीछे लग जाता है इंसान के और उसमें मतलब इंसान को तंग करता है, काटता है, भगाता है, दौड़ाता है। तो इसी के कंपनसेशन के तौर पर खुदा ने मददगार भी करार दिया, यानी मलाइका अंबिया औलिया, कि जिस तरीके से शैतान पकड़ के रास्ते से हटाना चाहता है ये आपकी हेल्प करते हैं कि आप रास्ते पे रहें, रास्ते की तरफ आएं, ये निज़ाम शफाअत है, ठीक है। अब ये निज़ाम शफाअत उस वक्त हेल्प करेगा जब हम दुनिया में इससे कोई कनेक्शन डेवलप करेंगे ना। अगर हम दुनिया की जिंदगी में यानी जो दार आजमाइश है, सामान जमा जहां पर करना है वहां पर हम शाफईन को पूछे ही नहीं, तो बाद में नहीं उनसे ताल्लुक पैदा हो सकता फिर, क्योंकि जो कुछ भी फराहम करना है वो यहां पे करना है, जो भी बीज बोना है वो यहां पे बोना है, ठीक है। ग्रो आखिरत में करेगा, उसमें मसला नहीं है, लेकिन बीज ही नहीं बोया तो फिर ग्रो क्या चीज करेगी। और वहां जाके कोई सोच रहा हो कि दिया अब मैं बीज बोलूं तो उसको वही जवाब मिलेगा, पीलर जेऊ वराकुम, जिस जगह को तुम पीछे छोड़ के आ गए नूर हासिल करने की जगह वो थी, ये नहीं है। नहीं, मतलब लॉज यूनिवर्सल है। देखें, आप इसको यूं समझें कि यानी कि जो पहली नजर में बात समझ में आती फर्स्ट स्टेज में कि हर चीज ऑटोमेटिक है, ठीक है। यानी कि जो जैसा है, क्योंकि रिवायतों में ये जुमला है ना कि खुदा के हिसाब लेने में कितना टाइम लगेगा, यानी कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों कुछ टाइम नहीं लगेगा? इसलिए कि जो जिसके अंदर है वो खुद ही जाहिर होगा। इक़्रा किताब का, अपनी किताब खुद पढ़ लो, सूरह बनी इसराइल की आयत है कि इक़्रा किताब का, अपनी किताब जो तुम अपनी जिंदगी में अपनी किताब यानी अपना नामा अमल और नामा ईमानी लिख कर आए हो उसे खुद पढ़ लो। कफा बे नफ्स कल यौमा अलैका हसीबा, और आज के दिन हर नफ्स अपने आप पर हिसाब लेने के लिए खुद काफ़ी है, यानी हर एक के लिए खुद जाहिर है ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, मुनाफिक अपने को तारीख देख रहा है, मोमिन अपने आगे नूर देख रहा है, काफिर अपने आप को भूखा और प्यासा पा रहा है। तो ये सब क्या है, ये ऑटोमेटिकली हर एक जब मशहूर होगा हर नफ्स, तो जो वो लेके गया है वो सबका सब जाहिर हो जाएगा, उसकी बुनियाद पर सेग्रीगेशन हो जाएगी, मोमिन अपनी जगह पहुंच जाएंगे, काफिर मुनाफिकीन। अब उसके बाद अब सवाल यह है कि क्या उसके बाद फिर खुदा नजर रहमत करेगा उन पर जो जहन्नम में चले गए, यह मुझे नहीं पता। यानी ये ओपन क्वेश्चन है और इसमें काफी उलमा इस बात को कहते भी हैं कि खुदा की रहमत से बईद है कि वो मतलब इतना ज्यादा जो हमें सख्ती नजर आती है या वो हो सकता है उसमें कोई गुंजाइश निकल आए, या किसी तरीके का कुफार के लिए भी कि जो दुश्मनान खुदा नहीं थे और ये था वो था कुछ, लेकिन हमें नहीं पता, इस बारे में कोई क्लियर बयान हमारे पास नहीं है। और यानी कि आयात कुरानी जो हैं वो हम फीहा खालिदून बार 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 कह रही हैं। यानी वो उसमें हमेशा रहेंगे, हमेशा के लिए फॉरएवर है।
तो कहते हैं ना कि खुदा की रहमत जो है वो एक दर्जा यहाँ पे और 99
जी
रोजे मैशर में, तो वो शायद उसका मज़ा हो,
पता नहीं, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग टू टेक चांसेस अगेंस्ट।
ये जो वर्डिंग है ये एक दर्जा और
इसका बजाहिर मतलब ये है कि जो नेमतें इस दुनिया में जाहिर हुई हैं और जो नेमतें आखिरत में जाहिर होंगी उनके दरमियान तनासुब 1:100 का है। यानी आपको खाने और पीने की जो लज्जत इस दुनिया में नसीब होती है और जो लज्जत आखिरत में नसीब होगी, आमतौर से हम उसको उस सेंस में समझते हैं, आमतौर से हम उसको उस सेंस में समझते हैं। यानी कि जो कुछ मोमिन को मिलना है, जो कुछ है वो वहाँ पर, यानी मा उख्फिया लहुम फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स इस बात का इल्म नहीं रखता कि हमने उसके लिए आँखों की ठंडक में क्या छुपा के रखा है। यानी मोमिन को जन्नत की बहिश्त की आखिरत की नेमतें उसके लिए दैट विल बी द बिगेस्ट सरप्राइज और उसकी बियॉन्ड हिज एवरी एक्सपेक्टेशन।
ये उस रहमत के उसमें आती है,
हाँ, और उसमें यानी कि 99 गुना तो यही बात समझ में आती है। अब उसमें ये है कि खुदा दरगुजर करेगा, यकीनन खुदा दरगुजर करेगा, लेकिन हमें पता नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने बिल्कुल आयत कुरानी पढ़ी है ना, अब मेरा ख्याल है कि हमें इसमें इधर उधर की राहें तलाश करना नहीं चाहिए, वो एक गड़बड़ बात हो जाएगी, वो गड़बड़ बात होगी।
आपने इमाम सज्जाद के लेक्चर में आपकी दुआ थी कि वो बदबخت है इंसान जो एक गुनाह
जिसका 10 एक जिसका 10 एक पर 10 एक के सामने हार जाए,
10 एक के सामने हार जाए, एक नेकी पर 10 मिलती है और गुनाह पर एक ही।
हाँ वही, कि जिसका 10 एक के सामने हार जाए,
यानी नेकी की ज्यादा कर कोशिश।
यानी खुदा ने इतने दरवाजे खोले हैं रहमत के, इतने दरवाजे खोले हैं रहमत के, और इंसान पूरी जिंदगी गुजार जाए और किसी एक से फायदा ना उठा सके।
आपने कहा था पहले कि खबर के अजाब के डर की वजह से और जहन्नम के आखिर,
यानी कुछ शिया जो हैं वो इन तमाम से कुछ इधर से कुछ उधर से हो के पहुंचेंगे हमारे पास,
जो जहन्नम से भी निकल सकते हैं इसका बड़ा चांस है।
जी ऊपर लेवल होता है ना,
हाँ, पहला तबका,
लेकिन इसमें जो हैदर में जैसे ये अदील कह रहे हैं कि वो पहली चीज क्या हो, मसलन इसमें बाज़ अफराद को जो देखा है उसमें जो उनको मतलब मनाजिल मिली हैं वाकई वो सिर्फ और सिर्फ मखलूक खुदा की मदद से मिली, यानी इस उसमें ज़रूर थे कि गौर फिक्र में भी थे, इसमें भी थे, लेकिन मखलूक खुदा की वाकईतन उन्होंने खिदमत की,
ठीक,
उसकी वजह से उनके रास्ते वाकईतन खुलते हुए नज़र आए।
देखें ये तमाम चीज़ें मिक्सअप हैं, ये अगर बात अगर अगर इंसान यानी बेसिकली बात यह है कि मखलूक खुदा की खिदमत किस नीयत से,
नहीं नियत जाहिर बात है कि अगर हाँ, सवाल इंसान है तो वो खुदा
की नियत से करे। और मैंने आप लोगों से मैंने पिछली दफ़ा ये बात कही थी ना कि आप जब भी खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो जो सबसे पहला एहसास आपके अंदर उजागर होता है खुद ब खुद बग़ैर किसी के कहे हुए, वो यही होता है कि मैंने अगर किसी भी खल्क के के साथ ज़र्रा बराबर ज़्यादती की तो मैं अपने मकाम पर नहीं रह सकूँगा। लेकिन उसमें जो वो बात है ना, यानी कि इस पर शहीद मुताहरी ने भी बात की है कि हमारी जो एक गलत फहमी है जो हमें इवन बचपन में हमारे घरों में तालीम दी जाती है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पैरेलल, कि तुम अल्लाह का हक कर दो नीचे कर दो तो अल्लाह तो माफ़ कर देगा बंदों का, ये गलत बात है, यानी ये वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। जो सही बात है वो ये कि हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह के अंडर में है, और यह मुमकिन नहीं है कि एक इंसान अल्लाह का बंदा हो और मखलूक खुदा पर शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला ना हो, यह मुमकिन नहीं है। तो ये उस तरीके से तो बिल्कुल सही है कि मखलूक खुदा की खिदमत जो है वो खुदाई कामों में से,
उसके बाद वाकई मनाज़िर लोगों को हाँ, नजर आ रहा है कि वाकई तय किया तेजी से लोग,
इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये ट्रैंक्विलिटी विद इन सेल्फ ये तो बड़ा
मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर आप हमसे कहें ना कि आप पहुंच जाए वहां तक तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि खुदा कह रहा है हुवल लजी अनज़ल सकीना था हुवल लजी, वो है कि जो नाजिल करता है सकीना को फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिन नहीं हासिल करता उसे,
मोमिन एफर्ट्स करता है
जी, इन्हें मैं और आप अपनी अपने आप को पेश करें खुदा की बारगाह में कि मैं जैसा आपने चाहा था बनना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं वैसा बनूं, वल्लज़ी वो है वो है कि जो नाजिल करता है
रिजल्ट वही है रिएक्शन के तौर पे,
वो उसका क्विकेस्ट वे वही जैसे जी इजाज़ भाई कह रहे हैं कि मखलूक खुदा की,
ये इरफान भाई ये डिफरेंट है,
ये बास्केट है
डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
आयत अल खुमैनी का बताया था कि वो जब भी हरम में ज़ियारत के लिए जाते थे तो वाजिबात करके वो वहाँ काफले वालों की खिदमत के लिए,
ये तो है इसमें तो
काफी नहीं, मतलब मेरा ये वाक्य दोहराने का मकसद है वो ये कि दोनों चीजें अगर पैरेलल में चले
वही तो मैंने कहा कि सवाल इंसान है
यानी बहुत तेजी से,
नहीं वो सुकून वाली बात कर रही थी उसमें मेरे जहन में इसलिए आ गया क्योंकि बहुत से अफराद ऐसे हैदराबाद में जानते होंगे अक्सर अफराद को कि वाकई सवाले थे इबादत के बेहतरीन थे लेकिन उनके जो की पॉइंट था ना आगे जाने
नहीं, लेकिन इजाज़ भाई इबादत की तो हमने बात सिरे से की नहीं है ना,
नहीं इबादत से मुराद आपने कहा,
यानी हमने कहा
नजर से कर रहा हूं,
हमने कहा खशियत कल्ब इबादत की बात हमने कहा की है,
नौ नमाजों से मुराद मेरी,
हमने इबादत की बात की नहीं, हमने तो कहा कि दिल का खुदा की याद के लिए नर्म होना दिल का खुदा की बारगाह में झुकना वो असल चीज है।
तो इसका मतलब मखलूक खुदा की खिदमत के लिए भी जो
इसकी मिसाल आप यूं देख सकते हैं कि जैसे अखलाक के हवाले से ये मिसाल दी जाती है कि एक नौजवान है जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं या माहौल में एक चीज कॉमन है कि लड़के मिले उन्होंने किसी ने सिगरेट पकड़ा दी या यहाँ माहौल में किसी ने अल्कोहल पकड़ा दी, ठीक है, और बड़े प्यार से गले में हाथ डाल के और बेहतरीन तरीके से, और यही इसी की इस हरकत का पता बाप को चला तो उसने उसके पिटाई की सजा दी सरजनिश की। अब सवाल यह है किसका अखलाक हुस्न खुल्क है,
सही
मारने वाले का या उसका जो प्यार मोहब्बत से जहर पकड़ा रहा है हाथ में। तो ये वो बात है कि ये बसीरत होनी चाहिए, ठीक है, ये वो बसीरत है। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत करना मेयार नहीं है, अला हुब्बिल्लाह अला हुब्बिही मोहब्बत, यानी जो सूरह दहर की आयतों में है, सूरह बकरा में आप देखें 177 जो कंप्लीट बयान करती है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, बकरा 177 अला हुब्बिही मोहब्बत खुदा की बुनियाद पर युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीम, बेहतरीन कोई शक नहीं है बेहतरीन।
पूरी अम्ब्रेला में बहुत सारी चीजें आ रही हैं।
तो इसलिए जी हाँ भाई भाई इसी में मैं सहीफतु ज़हरा में पढ़ रहा था कि एक खातून आई जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास, उसने सवालात पूछना शुरू किए, एक दो तीन, यानी लिखा है उसमें 10 सवाल हो गए। तो वो बेचारी खुद शर्मिंदा हो गई, कहने लगी मैंने आपको बिनते रसूल अल्लाह बहुत ज़हमत दी होगी। आपने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने वालिद गिरामी से सुना है कि जो लोग यानी मेरी उम्मत के उलमा आखिरत में उनको ऐसे खिलअत यानी लिबास पहनाए जाएंगे, एजाजी लिबास, कि जिनमें से जो नूर निकल रहा होगा उसके सामने सूरज के नूर की कोई हैसियत नहीं है, और उस नूर की शिद्दत किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी कि उन्होंने अल्लाह के बंदों को रुश्द अता करने में और लोगों को इल्म देने में कितनी मेहनत की है, कितना जिहाद किया है। जितना पूछना है पूछो।
तो इसमें बस एक और सवाल है हुब्बे खुदा का मसला,
अला हुब्बे ही,
अला हुब्बे ही, तो उसमें यकीनन बहुत सारे इंसान खुद अपने टेस्ट कर सकता है, तो उसमें कोई की टेस्ट ऐसा है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वाकई खुदा के लिए है या नहीं है?
देखिए बहुत आसान है, यानी कि अगर जो अगर कोई शख्स जिस पर हमने एहसान किया है वो
कोई भी काम से एहसान
या कोई भी काम, यानी अगर हम उससे बदले की तवक्को रखें, अगर हम उसके यानी एहसान फरामोश होने पे नाराज हो जाएं, तो इसका मतलब है कि खुदा के लिए नहीं किया। और ये काम जो है ना अल्लाह कराता है, ये हमें टेस्ट करने के लिए अल्लाह ये काम कराता है कि जिसके साथ आप खूब नेकी करें ना वही आपको सबसे सख्त सुनाए।